अब वही बात आती है, एक विद्वान ने कहा था ना कि अन्य मतों में ईश्वर से सृष्टि की शुरुआत हुई है, और जैन मत में क्या है कि अपनी सृष्टि का मतलब अपना जो जन्म का फेरा है वो जहां समाप्त होता है बस उस पॉइंट का नाम ईश्वर है। यानी अरहंत पद को अपने यहां पर ईश्वर माना गया है, वहां पर ईश्वर अनादि माना गया है। ईश्वर अनादि नहीं है जैन मत के अनुसार। अनादि का मतलब एक जीव की अपेक्षा से कोई ईश्वर अनादि नहीं होते, वो संसार का ही कोई जीव आत्मा से परमात्मा बनता है पुरुषार्थ करके, उसको ईश्वर माना है जैन दर्शन में। लेकिन अन्य मतों में शुरू से ही कोई ईश्वर है और उनकी इच्छा होती है कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो फिर वो सृष्टि की रचना कर डालते हैं और अपने आकार प्रकार में मनुष्यों का निर्माण किया, फिर बाकी बहुत सारे प्राणी बनाए, पेड़ पौधे भी बनाए, लेकिन अपनी आकृति में उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया और बिल्कुल मनुष्य सबसे विपरीत निकला उनसे। बाकी सब जीव जंतु जो थे उसमें उतना वो नहीं था, लेकिन मनुष्य सबसे उल्टा निकला बिल्कुल ईश्वर से, ऐसा उनके यहां पर माना जाता है। तो यहां कैसा बताया कि ये जो जगत है इसको किसी ने बनाया नहीं है और ना कोई इसको मिटा सकता है। अब उनके में यहां क्या आता है कि शंकर जी मिटा डालते हैं, बोले जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तब प्रलय आता है और प्रलय आने पर सब सृष्टि नष्ट हो जाती है। फिर दोबारा ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं तो बीच में क्या होता है, ये तो रचना हो गई और फिर वो एंड हो गया, ये स्टार्टिंग और एंड। अब बीच में क्या होता है तो बोले कि विष्णु उसका पालन करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, शंकर संहार करता है और विष्णु जो है वो पालन करता है। तो इस प्रकार की मान्यता चलती है। मान्यताओं के बारे में अपन ज्यादा द्वेष राग पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ इतना ही समझ लो कि ऐसा उनका मत है। और जैन मत में ऐसी चर्चा आती है कि ये जगत जो है किसी ने बनाया नहीं है, कोई मिटाने वाला नहीं है, ये तो बनाना मिटाना और रहना ये हर वस्तु का स्वभाव है। बनना मिटना और रहना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो उत्पाद हो गया ब्रह्मा, व्यय हो गया शंकर और द्रव्य हो गया विष्णु। इस प्रकार से चलती है चर्चा। तो वेत्रासन, वेत्रासन का मतलब होता है कि जो नीचे वाला लोक है अधोलोक, कभी आपने आकार देखा होगा लोक का, वेत्रासन के समान है। एक वो जो एक बांस की लकड़ी, बेंत की लकड़ियों से एक बनाया जाता है ना आसन बैठने का, नीचे की तरफ चौड़ा रहता है ऊपर की तरफ ऐसा सकरा रहता है ऐसा गोल सा, तो उसको वेत्रासन बोलते हैं। तो लोक कैसा है, तो नीचे चौड़ा है और ऊपर, ये अधोलोक को देखोगे तो नीचे सात राजू चौड़ा है और यहां पर ऊपर जा करके जहां समाप्त हो रहा है वहां एक राजू। फिर झल्लरी, झल्लरी का अर्थ क्या होता है, बीच में ये आकार है, इसको बोलते हैं झल्लरी, यानी नीचे की तरफ भी फैलता हुआ ऊपर की तरफ भी फैलता हुआ बीच में सकरा, ये झल्लरी है। तो लोग बीच में ऐसा है झल्लरी। और फिर उसके ऊपर मृदंग निभा, ऐसे मृदंग के समान है, मृदंग बीच में चौड़ा होता है और दोनों तरफ सकरा होता है। तो ये नीचे एक राज हो गया, यहाँ ऊपर एक राज हो गया, ये पूरा ऊर्ध्व लोक हो गया। तो इस प्रकार ये स्थिति बनती है लोक की। अत्र जीवा अनादि संसार अनंत कालम नाना योनिषु दुखम भोजम भोजम पर्यटन्ति। बोले कि यहाँ पर इस लोक में अनादि संसार में अनंत काल तक नाना योनियों में जो जीव होते हैं वे दुखम भोजम भोजम पर्यटन्ति, दुख भोगते भोगते पर्यटन्ति, यानी पर्यटन करते भ्रमण करते हैं। पर्यटन कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है यहाँ, भ्रमण करने का मतलब भटकते रहते हैं, पर्यटन का मतलब भटकना होता है। अब लेकिन फिर भी आज बहुत अच्छा शब्द माना जाता है पर्यटक केंद्र। अभी तो हमारे यहाँ पर्यटक केंद्र देखो, विदेशी लोग भी आते हैं, ऐसा चलता है। न चात्र किंचन नियतम अस्ति, इस संसार में इस जगत में कुछ भी नियत नहीं है। जल बुद्बुदोपमम जीवितम, जीवन कैसा है तो पानी के बबूले के समान है, कब फूट जाए कोई ठिकाना नहीं है। विद्युन्मेघादि विकार चपला भोग संपदा इति, विद्युत माने बिजली चमक जाती है, फिर मेघादि विकार, फिर मेघादि विकार का मतलब होता है मेघ धनुष, जिसको इंद्रधनुष भी बोलते हैं, रेनबो। तो ये कितने दिन तक कितने समय तक रहने वाले हैं, बिजली देखते ही साथ नष्ट हो जाती है। फिर ये इंद्रधनुष ये भी कितनी देर रहता है, देखते रहो अरे गायब हो गया कहाँ चला गया, ये स्थिति रहती है। ऐसी भोग संपदा माने संसार इंद्रियों के जो सुख संपदाएं हैं वो भी इसी प्रकार है। एवं आदि जगत स्वभाव चिंतनात्, इस प्रकार से जगत के स्वभाव का चिंतन करने से संसारात संवेगो भवति, संसार से डर लगता है। और कायस स्वभावश्च, फिर शरीर का स्वभाव क्या है, अनित्यता, अनित्यपना है, शरीर जो है अनित्य है, कब नष्ट हो जाए कोई ठिकाना नहीं, आज भले चंगे हैं कल का क्या भरोसा, दुख हेतुत्वम, और शरीर ही दुख का कारण है। अब जीवन भर कितने दुख होते हैं अपने को, कई कितने सारे दुख होते हैं, भूख का दुख होता है एक, फिर कभी और कई प्रकार के दुख होते हैं, उसका कारण है शरीर है। निसारता, उसमें कोई सार नहीं है। देखो पूरे शरीर में कोई एक आध परमाणु भी निकाल के बताओ जो बहुत अच्छा हो, पूरे शरीर में कोई नहीं है। तो अनेक परमाणु से बनी हुई जो त्वचा है उसके कारण थोड़ा चमक दमक दिखाई देती है, ये तो पैकिंग अच्छी है इसकी, माल खराब है ये शरीर की सत्यता है, निस्सारता, इसमें कोई सार नहीं। अशुचित्वमिति, और अपवित्रता भी है, शरीर बिल्कुल अपवित्र है। पुष्प सुग, एक कौन सी पंक्ति आती है, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होए अपावन निष्दिन मलझारी। ये शरीर ऐसा है कि इसके संपर्क से अच्छी अच्छी चीजें भी अपवित्र बन जाती हैं। और इसका हमने नमूना उस दिन दिया था आपको कि देखो अपने को लगता है कि पेट में जाने के बाद कोई चीज अच्छी चीज खराब होती होगी, लेकिन नहीं, आप मुंह में लड्डू डालो, चबाओ, अच्छे से स्वाद ले लो, और फिर दर्पण के सामने आप मुंह खोल के देखो, क्या आईना सामने लेकर के मुंह खोल लो, पता चलेगा कि क्या हाल हो गया। शरीर की संगति पा करके इतना अच्छा लड्डू, जिसकी खुशबू से पड़ोसियों की भी सांसें लंबी चल रही थी, उनकी क्या हालत हो गई, आज ये हालत हो गई मुंह में डालने के बाद। दर्पण में अपन देखते हैं तो फिर एकदम उल्टी जैसा होता है, देखा नहीं जाता। तो शरीर की संगति ऐसी होती है। तो एवं आदि काय स्वभाव चिंतनात्, इस प्रकार से शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से विषय राग निवृत्तेर वैराग्यम उपजायते, विषयों संबंधी राग की निवृत्ति के लिए या निवृत्ति के कारण वैराग्यम उपजायते, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इति जगत काय स्वभाव भावयितव्यो, इसीलिए जगत और काय का स्वभाव व्रतियों को भावित करते रहना चाहिए। क्या है कि राग होता है, अब औदयिक भाव है, कर्म का उदय आ जाए तो फिर राग हो सकता है, इसलिए बार बार ऐसा चिंतन करने से मन संभल करके, मतलब भटकता नहीं है, मर्यादा में रहता। अत्राह, यहाँ कोई कहता है कि उक्तम भवता, आपने बतलाया कि हिंसादि निवृत्तिर व्रतमिति, हिंसादिक का त्याग करना व्रत है, ऐसा बतलाया आपने। तत्र न जानीमह के हिंसादय क्रिया विशेषा इति अत्र उच्यते, तो हम ये नहीं समझ पाए कि हिंसादिक कौन सी क्रियाओं का नाम है। तो इति, इसलिए अत्र उच्यते यहाँ पर कहा जाता है। युगपद वक्तुम अशक्यत्वात्, एक साथ तो सबका स्वरूप नहीं बतला सकते, क्रम से बताना पड़ेगा, पहले हिंसा का स्वरूप बताएंगे, फिर झूठ का, फिर चोरी कुशील ऐसे। तो इसलिए तावत लक्षण निर्देशस्य क्रम प्रसंगे, तो लक्षण का निर्देश करने के लिए अभी यहाँ क्रम का प्रसंग आ गया, एक एक करके बताना पड़ेगा। तो यासावादौ चोदिता सैव तावत उच्यते, जो सबसे पहले क्रम में आया था ना, पहले सूत्र में सबसे पहला शब्द क्या था, इसमें सातवें अध्याय के पहले सूत्र का पहला शब्द क्या है, हिंसा था ना, तो वो हिंसा सैव तावत उच्यते, हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रह व्यतिर्व्रतम, तो उसमें सबसे पहले हिंसा लिखा था, तो उस हिंसा का स्वरूप यहां पर कहा जाता है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योग के कारण, योग मन मन वचन का एक चेष्टा, और प्रमत्त योग का मतलब होता है नीचे बतलाएंगे, और उसके कारण जो प्राणों का व्यपरोपण होता है अपने या दूसरों के, द्रव्य या भाव प्राण, इनका व्यपरोपण यानी वियोग करण होता है, उसका नाम है हिंसा, यानी प्राणों को क्षति पहुंचती है तब हिंसा कहलाती है। प्रमाद सकषायत्वम, प्रमाद किसको कहते हैं, सकषाय होने को प्रमाद कहते हैं, कषाय आ जाए तो उसका नाम प्रमाद है यहां पर। फिर तद्वान आत्म परिणाम प्रमत्त, उस कषाय सहित आत्मा का जो परिणाम हुआ है उसको प्रमत्त कहा गया है। प्रमत्तस्य योग, फिर उस कषाय सहित आत्म परिणाम का जो योग है, मन वचन काय का परिणमन, वो प्रमत्त योग कहलाता है। तस्मात प्रमत्त योगात, उस प्रमत्त योग के कारण इंद्रियादयो दश प्राणास, इंद्रियादि 10 प्रकार के प्राण होते हैं, तेषां यथासंभवम, उनका यथासंभव व्यपरोपणम वियोग करणम, जो व्यपरोपण होता है वियोग करण होता है, उनको क्षति पहुंचती है, वो हिंसा इति अभिधीयते, हिंसा ऐसा कही जाती है। सा प्राणिनो दुख हेतुत्वाद अधर्म हेतु, वो प्राणियों के लिए दुख का कारण होने से अधर्म का हेतु है, यानी पाप का कारण है। प्रमत्त योगाद इति विशेषणम केवलम प्राण व्यप्रोपणम न अधर्माय इति ज्ञापनार्थम। अब देखो इसमें कोई कहे कि भाई प्राणों को पीड़ा पहुंचाना हिंसा है, प्रमत्त योग जबरदस्ती क्यों यहाँ सूत्र को बढ़ाने के लिए आपने लगा दिया, तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, प्रमत्त योग लगाने से इसमें बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्या रहस्य छुपा है? कि केवलम प्राण व्यप्रोपणम, अकेला प्राण व्यप्रोपण हो तो फिर वो न अधर्माय, वो पाप का कारण नहीं होता। इति ज्ञापनार्थम, ये जानकारी देना है सूत्र में, कहा भी है उक्तम च वियोजयति चासुभिर्न च वधेन संयुज्यते पृथ्वी छंद। असुभिः वियोजयति न च वधेन संयुज्यते, प्रमत्त योग नहीं है, कषाय नहीं है अंदर, लेकिन किसी के प्राण वो पृथक कर दे तो भी वधेन न संयुज्यते, वो हिंसा से संयुक्त नहीं होता। जैसे साधु है, नीचे और भी उसका खुलासा कर रहे हैं, उक्तम च कहा भी है उच्चालिदम्मि पादे इरिया समिदस्स निगमट्ठाणे आबाधे जिकुलिंगो मरिज तज्जोगमासेज नहि तस्स तन्निमित्तो बंधो सुहमो विदेशिदो समये मुच्छा परिग्रहोत्तिय अज्जप प्रमाणदो भणिदो। अच्छी सुंदर गाथाएं दी है, बोले कि निगमट्ठाणे, निकलते हुए उस स्थान पर जहाँ से साधु बाहर निकल रहे हैं, माने कहीं गमन करने जा रहे हैं साधु, तो उठे हैं बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एरिया समिदस्स बहुत सावधानी से जमीन देख करके वो चल रहे हैं, तो ऐसे समय पादे उच्चालिदम में उनने एक पैर उठाया, क्या चलते समय एक पैर उठाया उन्होंने, और तज्जोग मासिज और उस शरीर की प्रवृत्ति का आश्रय लेकर कुलिंगो आबाधिज, कोई चीटी या फिर कोई जीव जंतु उनके पैरों से बाधा को प्राप्त हो गया, मरिज मर भी गया। तो आचार्य कहते हैं कि समय शास्त्र में तस्स तन्निमित्तो सुहमो वि बंधो न देसी दो, बोले कि उन साधु को उस प्राणी को जो बाधा पहुंची है उसके निमित्त से सूक्ष्म कर्म का बंध भी हिंसा का पाप भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एरिया समिदस्स, क्योंकि उनने गलती नहीं की है, वो उन्होंने तो सावधानी से देखकर ही पैर रखा था, लेकिन अब कोई जीव एकदम उचक करके आ गया बीच में, तो फिर उनकी भावना नहीं थी उसको ठेस पहुंचाने की, या फिर उनके अंदर कोई असावधानी भी नहीं थी, वो लापरवाही से भी नहीं चल रहे थे, वो तो देख करके चल रहे थे, लेकिन पैर के नीचे किसी जीव को बाधा हो गई या फिर उसके प्राण निकल गए तो फिर उनको हिंसा का पाप नहीं लगता, और अगर असावधानी से चले तो आगे बताएंगे उसके बारे में। तो जैसे अज्जप प्रमाण दो मुच्छा परिग्रहोत्तिय भणि दो, मतलब ये आत्माश्रित होता है ये भाव, हिंसा और अहिंसा जो है वो सिर्फ शरीर की चेष्टा से संबंध रखने वाली चीजें नहीं है, अज्जप प्रमाण दो वो आध्यात्मिक बातें हैं, माने आत्मा से भीतर से संबंध रखने वाली चीजें हिंसा और अहिंसा। जैसे मुच्छा परिग्रह होती है, मूर्छा परिग्रह है, भले बाहर आपके पास एक कौड़ी ना हो, अब कोई भिखारी है उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास मान लो उसका वो बर्तन भी खाली, एक रोटी भी नहीं है उसमें, चवन्नी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो क्या निष्परिग्रह है? नहीं, उसके अंदर मूर्छा रूप परिग्रह विद्यमान होने के कारण वो अभी निष्परिग्रह नहीं है। ननुच, अब फिर शंकाकार शंका कर रहे हैं कि प्राण व्यप्रोपणा भावे भी प्रमत्त योग मात्रादेव हिंसा इष्यते, कि प्राण का व्यप्रोपण न होते हुए भी, देखो किसी प्राणी के प्राणों को ठेस नहीं पहुंची तो भी प्रमत्त योग मात्रात एव, उसके अंदर सिर्फ मन वचन का है कि कषाय पूर्वक प्रवृत्ति चल रही है, किसी प्राणी के प्राणों को बाधा नहीं पहुंच रही है तो भी हिंसा इष्यते, उसको हिंसा माना जाता है। उक्तंच कहा भी है मरुदुवजीयदुव जीवो अयदाचार सृणिच्छिदा हिंसा पयदस्णत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्। बोले कि जीव मरदुव जीवदुव, जीव मरे या जिंदा रहे, अयदाचार सुनिश्चित हिंसा, जो अयत्नाचारी है माने जो जीव दया का पालन करने में सावधान नहीं है उसको हिंसा निश्चित है, हिंसा निश्चित होती है, लगती है। अब जैसे मान लो कोई मछुआरा ऐसे वो बंसी में कुछ कीड़ा फंसा करके बैठा हुआ है तालाब के किनारे, अथवा किसी ने ऐसे जाल डाला है अंदर, तो अभी मान लो 2.5 घंटे तक एक भी मछली पकड़ में नहीं आई, तो क्या उसको हिंसा का पाप नहीं लग रहा है? लग रहा है, क्योंकि उसकी भावना किसी की जीव रक्षा की या फिर दया की भावना तो है नहीं, वो तो मछली पकड़ में नहीं आई, वो मछली के पुण्य का उदय है कि वो उसके जाल में नहीं फंस रही है, तो उससे इसको थोड़ी पुण्य लगने वाला है, इसको तो पाप का बंध ही होगा। और पैदस्य नत्थी बंधो समिदस्य, जो समिति पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं तो उनके द्वारा हिंसा मित्तेण बंधो नत्थी, अगर किसी प्राणी की हिंसा हो भी जाती है तो भी बंधो नत्थी, उनको कर्म का बंध नहीं होता, तो भी साधु प्रतिक्रमण करते हैं, क्योंकि क्या पता कब भावों में प्रमाद आ जाता है, इसलिए सावधानी पूर्वक चलते हुए भी अगर किसी जीव को बाधा हो जाए तो फिर उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं। अच्छा, ये शंका है, ननुच ननुच, ननु का मतलब होता है शंका, तो प्राण व्यपरोपणा भावे भी प्रमत्त योग मात्रादि हिंसा इष्यते, प्राणों का व्यपरोपण न होने पर भी प्रमत्त योग मात्र से हिंसा मानी जाती है। कहा भी है कि जीव मरो या न मरो, असावधान मनुष्य को निश्चित रूप से हिंसा का दोष लगता है, और जो समिति पूर्वक प्रयत्नशील है, सावधान है, उनको हिंसा मात्र से बंध नहीं होता, नैष दोष। आचार्य उत्तर देते कि नहीं, ये दोष भी नहीं है, क्यों? अत्रापि प्राण व्यपरोपण अस्ति भाव लक्षण, क्योंकि यहां भी प्राणों का व्यपरोपण तो होता है, भावनात्मक होता है, भले बाहर से किसी जीव के प्राणों का व्यपरोपण नहीं हुआ, जैसे वो मछुआरा बैठा है पानी में जाल बिछा करके, तो ठीक है मछली नहीं फंसी, लेकिन प्राण व्यपरोपण तो चालू है। कैसे चालू है? तो बोले स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान पूर्वं प्राण्यंतराणान्तु पश्चात् स्याद्वा नवावदः। बोले कि स्वयमेव, वो स्वयं ही मछुआरा आत्मना आत्मानं हिनस्ति, वो प्रमादवान होने के कारण, प्रमादवान आत्मा, आत्मना अपने द्वारा, आत्मानं हिनस्ति अपनी आत्मा की हिंसा करता है, मतलब इतनी कषाय करने वाला जीव कि मैं इतनी मछली पकड़ूंगा, इतना व्यापार करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये जो हिंसा के भाव करने वाला है उस भाव के द्वारा अपने आत्मा की शांति को भंग कर डालता है, और अपने अंतरंग भावात्मक जो प्राण है उसका नाश करता है। पूर्वम, पहले ये करता है वो, फिर पश्चात आगे क्या करता है? प्राण्यंतराणाम तु वध स्याद वा न वा, फिर बाद में दूसरे प्राणियों का वध वो कर सके अथवा न भी कर सके, जरूरी थोड़ी कि प्राणियों का वध वो कर ही ले, सोचने मात्र से थोड़ी होता है। सफलता कब मिलती है? सफलता उसको भी तब मिलेगी जब उसका पुण्य होगा। क्या होता है कि बुरे कामों में भी सफलता किसको मिलती है? पाप का उदय हो तो बुरे कामों में भी असफल होता है व्यक्ति, तो पुण्य का उदय चाहिए उसको, तो इस प्रकार उसको हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि वो अपने भावों का तो नाश कर देता है, यानी अपनी आत्मा का तो पहले हनन कर डालता है कषायों के द्वारा। आह अभिहित लक्षण हिंसा, हिंसा का लक्षण आपने बतला दिया, तदनंतर उद्दिष्टम अनृतम किन लक्षण मिति अत्र उच्यते, फिर उसके बाद जो अनृत नाम का पाप कहा था झूठ, उसका क्या लक्षण है, ऐसा प्रश्न किया किसी ने, इति, इसलिए अत्र उच्यते यहाँ कहा जाता है असत विधान अनृतम, असत वचन जो है उसका नाम झूठ है। सत शब्द प्रशंसावाची, सत शब्द जो है वो प्रशंसावाची, जैसे सज्जन है, सत्पुरुष है, सद्बुद्धि है, ये जो बुद्धि प्रशंसनीय होती है, जो मनुष्य प्रशंसनीय होता है उसके लिए सत लगा देते हैं, तो वैसे सत शब्द जो है वो प्रशंसावाचक है। न सत असत, जो सत नहीं है माने प्रशंसनीय नहीं है वो असत कहलाता है। अप्रशस्तम इति यावत, तो उसका अर्थ क्या हुआ? अप्रशस्त, जिसकी प्रशंसा करने लायक नहीं है, ऐसी भाषा बोलना भी असत है, अनृत नाम का पाप है। फिर दूसरा क्या बता रहे हैं कि असतोर्थस्याभिधानम असदभिधानम अनृतम, अथवा जो चीज मौजूद नहीं है उसका कथन करना कि भाई वहां छत पर मत जाना, रात में भूत आता है, अब पता नहीं किसने देखा भूत, लेकिन ऐसे झूठ बोलता है, जो नहीं है उसके बारे में कथन करता है, तो वो भी असद अभिधान अनृतम, वो भी झूठ है। फिर ऋतम सत्यम, न ऋतम अनृतम, और ऋत का अर्थ होता है सत्य, तो जो सत्य नहीं है उसको भी अनृत कहते हैं। किम पुनर अप्रशस्तम, अप्रशस्त किसको कहोगे? तो बोले प्राणी पीड़ा करम यत्तत अप्रशस्तम, जो प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न करने वाला है उसको अप्रशस्त कहते हैं। जैसे गाली गलौज वगैरह हैं, इनके द्वारा लोगों को पीड़ा होती है, तो ये असत वचन है। फिर विद्यमान अर्थ विषयम वा अविद्यमान अर्थ विषयम वा, अब वो चाहे कोई मौजूद वस्तु के बारे में बोला जा रहा हो या फिर अविद्यमान के बारे में कहा जा रहा हो, लेकिन अगर किसी प्राणी को पीड़ा पहुंच रही है तो असत है। उक्तम च कहा भी है प्रागेव अहिंसा व्रत परिपालनार्थम इदम इतरत व्रतम, सबसे पहले ही ये बतला चुके थे कि अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए ये बाकी व्रत होते हैं। तस्माद हिंसा कर्म वच अनृतम इति निश्चयम, इसलिए जो हिंसा करने वाले वचन हैं उनको ही झूठ इस प्रकार जान लेना चाहिए, अनृत जानना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए। अथानृतानंतर मुद्दिष्टम यत स्तेयम तस्य किन लक्षणम इति अतः, अब अनृत के पश्चात कहा गया जो स्तेय नाम का पाप है उसका लक्षण क्या है, तो कहते हैं अदत्तादानं स्तेयम। अब प्रमत्त योगात जो है उसको सबके साथ लगा लेना पड़ेगा कि कषाय के आवेश में ऐसा झूठ बोल जाना वो असत्य नाम का पाप है, फिर कषाय के आवेश में बिना दी हुई वस्तुओं को ग्रहण कर लेना वो चोरी है। आदानम ग्रहणम, आदान का अर्थ होता ग्रहण, अदत्तस्य आदानम अदत्तादानम स्तेयम इति उच्यते, वो चोरी कहलाती है। यद्येवम, यदि ऐसा है तो कर्म नो कर्म ग्रहणम अपि स्तेयम प्राप्नोति, फिर हम सांस ले रहे हैं, किसी ने दिया तो नहीं हमें हवा, लेकिन हम सांस ले रहे हैं बिना पूछे, ये चोरी हो गई। बोले अन्य आदत्तत्वात, बोले किसी ने दी नहीं हमें हवा और फिर हम सांस ले रहे हैं, तो फिर चोरी का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले फिर कर्म ग्रहण माने हम जैसे पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं, तो उस समय वो पुण्य और पाप के जो परमाणु अपन अपने आत्मा में ग्रहण कर लेते हैं, वो कोई भेंट देने आता है क्या कि ले बेटा ये पाप तेरे लिए और ये पुण्य तेरे लिए, ऐसा तो नहीं है, वो तो सिर्फ अपने भावों से बांध लेता है, तो फिर ये चोरी हो गई? तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, इस दोष नहीं, ऐसा दोष नहीं है यहाँ पर। क्यों? दाना दाने यत्र संभव संभवतस, ठीक है, दाना दाने यत्र संभवतस तत्रैव स्तेय व्यवहार, बोले कि जहां पर दान और आदान संभव होते हैं वहीं चोरी की बात चलती है। अब जैसे हवा है, हवा को कोई दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, वो तो ऑटोमेटिक एक प्रकृति का नियम है, तो वहां चोरी का दोष नहीं आएगा। चोरी का दोष कहाँ आएगा? कोई चीज देने लायक हो या लेने लायक हो, वहां अगर कोई कुछ ऐसी गड़बड़ी करे तो उसको चोरी कहते हैं। कुतः? क्यों? अदत्त ग्रहण सामर्थ्यात, क्योंकि अदत्त ग्रहण, यहाँ जो शब्द अदत्त लिया ना सूत्र में, उससे ये बात समझ में आ जाती है। एवं अपि, ऐसा होने पर भी भिक्षोर जो साधु होते हैं उनका ग्राम नगरादिशु भ्रमण काले, ग्राम और नगर आदिक में भ्रमण करते समय रथ्या द्वारादि प्रवेशाद अदत्तादानम प्राप्नोति। फिर शंका करने, क्या शंका रखी? बढ़िया, कि जब साधु महाराज भी आहारचर्या के लिए आते हैं नगर में, तो फिर रथ्या द्वार, रथ्या माने रोड रास्ता, और द्वार माने जो नगर का द्वार होता है, आदि में जब प्रवेश करते हैं, अब किसी ने दिया है क्या उनको कि ये गेट तुम्हारे लिए है? अब किसी के बिना दी हुई चीज में साधु प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर उनको चोरी का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, बोले। तो फिर आचार्य उत्तर क्या दे रहे हैं कि नहीं श्री दोष है, ये दोष भी नहीं लगेगा। बोले क्यों? सामान्य मुक्तत्वात, क्योंकि वो सामान्य रूप से सबके लिए मुक्त है, वो दरवाजा और वो रास्ता सबके लिए खुला है, उसमें किसी का निषेध या प्रतिबंध नहीं है। आतंकवादियों के लिए जरूर होता है प्रतिबंध, वो बात है, लेकिन यहाँ साधु जो है उनके लिए और फिर यहाँ के जो सज्जन लोग हैं उनके लिए कोई दोष नहीं है। तथा ही उसका खुलासा कर रहे हैं, अयम भिक्षु पिहित द्वारादिशु न प्रविशति, अगर ये साधु जो है ये पिहित द्वारादिशु बंद दरवाजों में प्रवेश नहीं करते, अमुक्तत्वात, क्योंकि खुले नहीं है। अथवा प्रमत्त योगादिति अनुवर्तते, अथवा इसका दूसरा समाधान ये लगा लो कि जो हिंसा का स्वरूप बताने वाला सूत्र था उसमें प्रमत्त योगात ये शब्द आया था, तो उसका यहाँ पर भी अनुवर्तन कर लो, यहाँ भी उसको जोड़ लो। प्रमत्त योगाद अदत्तादानम यत तत् स्तेयम इति उच्यते, प्रमत्त योग के कारण जो बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण है वो चोरी है, ऐसा कहा जाता है। न च रच्छद रथ्यादि प्रविशत, न कि रास्ते आदि में प्रवेश करने वाले साधु के अंदर प्रमत्त योग उसकी, प्रमत्त योग नहीं है उनको, कोई ऐसा कषाय भाव थोड़ी है, रास्ते पर चले जा रहे हैं या फिर द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, कषाय पूर्वक तो नहीं कर रहे हैं। तो तेन एतद् उक्तम भवति, उससे ये कहा जाता है कि यत्र जहां पर संक्लेश परिणामेन तीव्र कषाय के परिणाम के साथ प्रवृत्तिस प्रवृत्ति होती है। देखो कितना सुंदर समाधान है, प्रमत्त योग के लिए पर्यायवाची शब्द दिया है, संक्लेश परिणाम पूर्वक। प्रमत्त योग का मतलब छठे गुण स्थान वाले प्रमाद की बात नहीं चल रही है यहां पर, नहीं तो फिर छठे गुण स्थान में प्रमत्त अगर मान लो आप तो फिर ये सारे पाप तो वहां पर हो जाएंगे छठे गुण स्थान में, फिर महाव्रत कैसे होंगे? आ रहा है समझ में? छठे गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त विरत। तो प्रमत्त विरत की यहां पर, वहां प्रमत्त जो है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहां पर प्रमत्त का पर्यायवाची क्या दे दिया? संक्लेश परिणाम। यानी ये सूत्र याद रखने योग्य है, ये 15 नंबर के सूत्र की टीका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यत्र संक्लेश परिणाम प्रवृत्ति तत्र स्तेयम भवति, इस बात का खुलासा कर दिया कि प्रमत्त योग नहीं है। ऊपर वाली पंक्ति में क्या लिखा? नच रथ्यादि प्रविशतः प्रमत्त योगोस्ति, रास्ते आदि में प्रवेश करने वाले साधु के अंदर प्रमत्त योग नहीं है। तेन एतद् उक्तम भवति, उससे ये कहा जा रहा है कि यत्र जहां संक्लेश परिणाम प्रवृत्ति, जहां संक्लेश परिणाम के साथ प्रवृत्ति होगी तत्र स्तेयम भवति, वहीं स्ते यानी चोरी होगी। बाह्य वस्तुनो ग्रहणे च अग्रहणे च, बाह्य वस्तु को ग्रहण करो तो भी चोरी होगी और अग्रहणे च, ग्रहण न करो तो भी चोरी होगी। भाव कर लिया ग्रहण करने का तो चोरी होगी। इस प्रकार इसका खुलासा हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रमत्त योग का तात्पर्य है संक्लेश परिणाम से। संक्लेश परिणाम किसको कहते हैं? प्रश्न है, किसी को पता है? अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर शुभ्र सागर में पर्यो, क्या अर्थ है? संक्लेश का अर्थ क्या है? क्लेश का अर्थ तो ठीक है पीड़ा है, लेकिन संक्लेश का अर्थ पीड़ा नहीं है। संक्लेश का अर्थ क्या होता है? तो धवला की छठी पुस्तक में संक्लेश की परिभाषा दी है कि जिस भाव के होने पर असाता आदि पापों का बंध होने लग जाए वो भाव संक्लेश भाव है। याद रखने लायक परिभाषा है कि जिस भाव के होने पर असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध होने लगे वो भाव संक्लेश भाव है। तो उस संक्लेश परिणाम के साथ जो प्रवृत्ति होती है वो पाप का कारण बन जाती है। बाहर से पाप कर सको या ना कर सको, बाह्य वस्तु नु ग्रहणी च अग्रहणी च। अतः चतुर्थम अब्रह्म किन लक्षण मिति अत्र उच्यते, अब चौथा जो अब्रह्म नाम का पाप है उसका लक्षण क्या है? तो इसलिए यहां पर कहा जाता है, आ गया ना समझ में? कुछ बचा तो नहीं? प्रमत्त योग जो शब्द था उसका तात्पर्य केवल संक्लेश परिणाम से था। संक्लेश परिणामों के साथ अगर मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है तो फिर उसमें हिंसादिक पांचों पाप होते हैं, और अगर संक्लेश परिणाम पूर्वक नहीं होता तो फिर कुछ नहीं होता। अब चौथा जो अब्रह्म नाम का पाप है, जिसको कुशील भी बोलते हैं और फिर व्यभिचार भी बोलते हैं, ऐसे कई पर्यायवाची शब्द हैं उसके, तो उसको उसका क्या लक्षण है? तो बोलते हैं मैथुनम, अब मैथुनम अब्रह्म, मैथुन जो है उसको अब्रह्म कहा जाता है। स्त्री पुंसयोश चारित्र मोहोदये सति राग पर राग परिणामा विष्टयो हो परस्पर स्पर्शनम प्रति इच्छा मिथुनम। स्त्री और पुरुष के अंदर चारित्र मोह का उदय होने पर राग परिणाम का आवेश आ जाता है, और उस राग परिणाम के आवेश से जो आविष्ट हैं उनको परस्पर स्पर्शनम प्रति इच्छा, एक दूसरे को छूने की इच्छा हो जाती है, उसका नाम है मिथुन। और मिथुनस्य कर्म, वो मिथुन राशि अलग चीज है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पर मिथुन राशि का अर्थ होता है ट्विंस, और यहां पर एक राग भाव से संबंध रखने वाला मिथुन है। और मिथुनस्य कर्म, इस प्रकार जो रागी स्त्री पुरुष हैं उनका कर्म यानी उनकी क्रिया जो होती है उसको मैथुनमिति उच्यते, मैथुन कहा जाता है। न सर्वम कर्म, स्त्री और पुरुष के द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाएं इस रूप नहीं होती। स्त्री और पुरुष मिलकर के अगर कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, राग नहीं है जिनके अंदर, तो उनकी क्रियाओं को ये अब्रह्म की श्रेणी में नहीं रखा जाता। कुत क्यों? बोले लोके शास्त्रे च तथा प्रसिद्ध, लोक में भी इस बात की प्रसिद्धि है और शास्त्रों में भी ये बात सिद्ध होती है। क्या? लोके लोके तावद आपाल लोके तावद आ गोपाल में आबाल गोपाल होना था ना, क्या छपा है? दा गोपाल छपा है, दाबाल गोपाल होना था।